जराधमाधव कुंज बिहारी जराधा जराधमाधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ किंवर धारी गोपी जन वल्लभ किंवर धारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रजदान रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रजदान रंजन यशोदा जमुना तीरावन चारी जमुना जमुना तीरावन चारी जमुना जय राधमाधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ किंवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ किंवर धारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रजदान रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रजदान रंजन यशोदा जमुना तीरावन चारी जमुना जमुना तीरावन चारी जमुना जय राधमाधव कुंज बिहारी जय Hare Krishna, कृष्ण प्यारे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। कलयुग पावन कलि भयनाशन, युग चिरंदन गाओ रे कलयुग, युग चिरंदन गाओ। कलयुग पावन कलि भयनाशन, युग चिरंदन गाओ रे कलयुग। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे जय। जय जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे जय। जय जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे जय सचिन। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे जय सचिन। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे जय। जय जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गाओ रे जय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर षट् श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब भी इस पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तो वैसे समय में मैं आता हूँ, बारंबार आता हूँ। जब भी धर्म समाप्त होने लगता है, लुप्त होने लगता है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, अर्थात लोग धर्म को अधर्म मानकर और अधर्म को धर्म मानकर पालन करने लगते हैं, ऐसे समय में भगवान आते हैं और उनके साथ उनके पार्षद आते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति ये एक ऐसी नदी है जो भक्तों भक्त नाम के पर्वत से निकलती है। भक्ति की नदी है तो कृष्ण के चरणों से निकली हुई, लेकिन फिर भी हम तक पहुंचती है एक पर्वत के द्वारा और वो पर्वत है भगवान के भक्त। तो जब भी भगवान आते हैं उनके साथ उनके महान भक्त भी लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। और केवल लीला में भाग लेने के लिए नहीं, हम सबको बहुत सुंदर संदेश सुनाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, जीवन में एक बदलाव लाने के लिए, हम सबको सिखलाने के लिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसीलिए भक्त आते हैं। तो समय समय पर भगवान आते हैं और समय समय पर भगवान के भक्त भी आते हैं। भगवान के भक्त इस जगत में आकर भगवान की ही शिक्षाओं को अपने आचरण से दिखलाते हैं, ताकि उनको देखकर, उनको सुनकर, उनके संग में रहकर, उनकी सेवा करके भक्त जान सके कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं और भगवान की सेवा का आनंद क्या है। अन्यथा हम लोगों के लिए संभव नहीं है भगवान की भक्ति के रस का अनुभव करना। हम लोग जानते नहीं हैं कि भगवान की भक्ति में कितना रस है, कितना आनंद है, क्योंकि हम जिस आनंद के पीछे हैं वो तो समाप्त हो जाने वाला है। वो ऐसा आनंद है जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है। इस जगत में सारे आनंद ऐसे ही हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे आनंद में रमण नहीं करते। कौन से आनंद में? यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा आनंद जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है, ऐसे आनंद में बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आनंद समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन वो एक ऐसे आनंद में रमण करता है जिसका न तो कोई आदि है न अंत है, न शुरुआत है न अंत है। अर्थात ऐसे आनंद की प्राप्ति जो कभी समाप्त नहीं हो, ये हमारे लिए अनिवार्य है। नहीं तो बाकी आनंद तो हम लोग वैसे भी कई योनियों में ले चुके हैं, और ऐसे आनंद को देने के लिए, अपने जीवन के द्वारा दिखलाने के लिए भक्त आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए, पिछली बार हमने वर्णन किया था रविवार को कि महाप्रभु आए, उन्होंने सन्यास लिया, वो भी केवल लोगों पर कृपा करने के लिए। 24 वर्ष की छोटी सी आयु में सन्यास को धारण किया और फिर उन्होंने भ्रमण प्रारंभ किया, और भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर आए जहां उन्होंने भक्तों को एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा सुनाई, अपने एक भक्त की कथा। उन्होंने सुनाया कि किस प्रकार एक स्थान रेमुना में वो पहुंचे। ये रेमुना स्थान उड़ीसा में है। तो रेमुना में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बहुत महान भक्त माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई। बहुत ही उपदेशीय कथा है, जिससे बहुत उपदेश प्राप्त होते हैं, संदेश हमें मिलते हैं भक्ति के। तो चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना पहुंचे, उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि मैंने ये कथा अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुनी है, और ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। देखिए वो भक्त भी कितना भाग्यवान होगा जिसको भगवान के गुरु बनने का अवसर मिलता है, जिसको भगवान के माता पिता बनने का अवसर मिलता है। वो डांट सकते हैं भगवान को, अन्यथा तो भगवान को देखना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। लेकिन भगवान के भक्त जैसे यशोदा इत्यादि, वो डांटते हैं। आप सोचिए, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अंदर जाएंगे, अल्टर में भोग लगाएंगे और भगवान को डांटेंगे, 5 मिनट में खा लेना, अंदर आने वाला हूं मैं, एक भी कुछ भी प्लेट में नहीं बचना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं ना, माताएं बच्चों के सामने प्लेट रखती हैं, बिल्कुल खत्म कर देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, पुजारी अंदर जाए, भगवान के सामने प्लेट रखे, और क्या वो कभी ऐसा कह सकता है कुछ भी बचना नहीं चाहिए, 5 मिनट में वापस आऊंगा, घंटी बजाकर जा रहा हूं? नहीं, पुजारी बड़े बड़ी नम्रता से करना चाहिए, हमें पता नहीं पर्दा बंद करके अंदर पुजारी क्या करते हैं, लेकिन फिर भी पुजारी को बड़ी नम्रता से भगवान के सामने रखना चाहिए, बड़े आदर से उनको आह्वान करना चाहिए कि आप आइए, विराजमान होइए और इस भोग को स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए, क्योंकि मेरी सेवा स्वीकार करके आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, तो इस भाव में। लेकिन यशोदा वो तो डांटती थी, वो जब खेल रहे होते थे कृष्ण तो उनको बुलाती थी डांटते हुए, चलो आओ इधर समय हो गया, तो कृष्ण बोले नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, अरे तुम्हारे पिताजी बैठे हुए हैं खाने के लिए, जल्दी आओ वापस। तो क्या भक्ति का स्तर होगा उनका जो भगवान को डांट सके, जो भगवान के माता पिता बने, जो भगवान के गुरु बने। तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और उन्होंने ये कथा चैतन्य महाप्रभु को सुनाई थी और अब महाप्रभु अपने भक्तों को सुना रहे थे रेमुना में। भगवान के जो भक्त होते हैं आचार्य, विशेष करके भगवान के भक्त भी बहुत हैं, उनमें कुछ आचार्य होते हैं, आचार्य जो कुछ समय काल के अनुसार किसी धर्म की या किसी धर्म के नियम की स्थापना करते हैं, ऐसा धर्म जो भगवान की ओर ले जाए, या फिर सनातन धर्म के सिद्धांतों को काल के अनुसार, लोगों के अनुसार उन्हीं सिद्धांतों को बड़ी सरल भाषा में देते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। और आचार्यों की आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में, क्या हम ऐसे ही भक्ति नहीं कर सकते, क्या आवश्यकता है एक आचार्य की, भक्ति ही करनी है, भगवद गीता मार्केट में मिलती है जाकर ले लें, भगवान की मूर्तियां मार्केट में मिलती हैं जाकर ले लें, क्या आवश्यकता है एक आचार्य की, एक गुरु की, क्या हम ऐसे भक्ति नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है? इसके कई कारण हैं, हमें आचार्यों की बहुत आवश्यकता है, जिसका पहला कारण कि कृष्ण हर समय उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे अर्जुन के सामने थे तो अर्जुन ने उन्हें ही गुरु बना लिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता। तो लेकिन हर समय तो कृष्ण हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इसीलिए हमें अर्जुन जैसे कोई भक्त चाहिए जिन्होंने कृष्ण से सुना हो, या जिन्होंने जिसने कृष्ण से सुना है उनसे सुना हो, ऐसे परंपरा में आए हुए कोई भक्त चाहिए। तो पहला कारण आचार्यों के होने का है कि भगवान उपस्थित नहीं, और जब उपस्थित भी होते हैं भगवान तो भी लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं जब श्री कृष्ण उपस्थित थे तो सब लोग भक्त हो गए, दुर्योधन तो था ना, विरोध करने वाले थे, और दुर्योधन ही क्यों, उस समय तो एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अपने आप को वासुदेव कहता था, ओरिजिनल वासुदेव, जानते हैं क्या नाम था उसका, हाँ नहीं नहीं पुंडरिक नहीं, वो पौंड्रक। तो वो कहता था कि ये जो कृष्ण है अपने आप को वासुदेव कहता है, ये सच्चा नहीं, मैं सच्चा हूं। इसीलिए एक दिन कृष्ण से युद्ध करने आया, दो झूठे हाथ भी लगा कर आ गया कि मैं वासुदेव हूं, मेरे चार हाथ हैं, मैं भगवान हूं, कृष्ण ने मार कर भगा दिया उसको। तो उस समय भी ऐसे लोग थे जो कृष्ण को नहीं समझ रहे थे, इसीलिए आचार्यों की आवश्यकता है। दूसरा कारण, भगवान ने अपना संदेश शास्त्रों में दिया है और शास्त्र के सार क्या हैं वो हमें आचार्य समझाते हैं, हमारी तो योग्यता नहीं है सारे शास्त्रों को पढ़कर उसका निचोड़ निकालना, लेकिन आचार्य करते हैं। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको, तो वो ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं। और आचार्य आते हैं हमें हमारे कष्टों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमें बताने के लिए कि आप कष्ट में हैं। व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, कभी कभी कष्ट बहुत बढ़ जाता है, आप देखिए इस जगत में इतना कष्ट है, दुख कहीं से भी आ जाता है, कभी कभी दुख इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्यों करता है आत्महत्या? वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है ना, इतने तकलीफ सहने से, मृत्यु की इंतजार करने से तो अच्छा है मर जाना चाहिए, नहीं आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कौन व्यक्ति मृत्यु के इंतजार करता रहेगा, आज नहीं एक महीने बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद मृत्यु आएगी, अच्छा है आज ही मर जाए, नहीं? हाँ या ना? आप लोग सब अभी सोच रहे हैं क्या कहें, अगर ना कहें या हाँ कहें, हाँ कहें तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, अरे सुसाइड करते हो, भारत में कानून है। तो अच्छा है या बुरा है हमें बताइए, आत्महत्या करना पक्का बुरा है? अरे लेकिन सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारा लोन लिया है वो चुक जाता है एक ही बार में राइट? किसी ने लोन लिया हो, करोड़ों रुपया लोन ले ले, अभी हमने सुना एक बहुत बड़े उद्योगपति भारत के, कुछ 9,000-10,000 करोड़ रुपया ले लिया है लोन, तो करोड़ रुपया ले ले, उसके बाद कहाँ आएगी पुलिस या जो भी है, कहाँ पकड़ने आने वाले हैं, तो अच्छा नहीं है? अब बताइए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है? कैसे लोग हो आप लोग, किसी के ऊपर इतना लोन है वो चला जाता है लोन खत्म, सबसे अच्छा और क्या चाहिए? या मान लीजिए जीवन में बड़े कष्ट हैं, हर व्यक्ति तंग कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, घर में रेंट देने को पैसा नहीं है, जॉब भी नहीं मिल रही है, तो अच्छा है ना कि मर जाए? नहीं अच्छा है कि बुरा है? अरे कैसे लोग हो आप लोग, किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट है आप बोल रहे अच्छा नहीं मरना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए। हमने सुना था, हमने सोचा आप लोग कहेंगे हाँ अच्छा है मर जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको? इतना कष्ट हो रहा है, इंतजार करें मृत्यु का कि आएगी आएगी आएगी? दरअसल उसको ज्ञान लेना चाहिए, और ज्ञान ये है कि अगर हम आत्महत्या कर भी लेते हैं, वैसे आप सब सही कह रहे हैं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, अगर हम आत्महत्या कर भी लेते हैं तो वो हमारे कष्टों का अंत नहीं है, इसको जान लीजिए, क्योंकि उसके बाद कष्ट प्रारंभ होते हैं जो अगले जन्मों तक चलते हैं। आपको एक उदाहरण देते, जैसे हमने उदाहरण दिया किसी ने लोन लिया है और वो बिना चुकाए चला जाए, एक दृष्टि से अच्छा हो गया सारा लोन चुक गया, लेकिन दूसरी दृष्टि, एक व्यक्ति ने लोन लिया है, अब वो अपने आपको मार लेता है, वैसे उसकी मृत्यु 65 वर्ष में होनी थी, लेकिन 45 वर्ष की उम्र में वो अपने आप को फांसी लगा लेता है कि कुछ नहीं होगा मेरा, 20 वर्ष तक उसे शरीर प्राप्त नहीं होगा और वो तरसेगा, तड़पेगा, क्योंकि वो व्यक्ति, वो आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में है लेकिन उसको स्थूल शरीर नहीं है, वो बहुत ज्यादा कष्ट में होता, वो कुछ करना चाहता है लेकिन शरीर नहीं है उसके पास, तो इसलिए 20 वर्ष तक वो केवल कष्ट भोगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद मान लीजिए उसके अच्छे कार्यों के कारण उसे मनुष्य शरीर मिल भी जाता है, तो भी जिससे उसने लोन लिया था पिछली बार, पिछले जीवन में, और चुकाया नहीं, वो उसका पुत्र बनकर पैदा होगा, और ऐसा पुत्र जो जीवन भर बीमार रहेगा, ये बेचारा कमा कमा के चुकाता रहेगा उसका कर्ज, केवल उसकी बीमारी पर खर्चा करता रहेगा, और बाद में वो पूछेगा क्या मैंने किया था, ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बच्चे को क्यों दिया। आसक्त भी रहेगा बच्चे से, मारेगा नहीं उसे, लेकिन खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, जितना कमाएगा सब उधर, तो सारा लोन निकाल लेगा वो व्यक्ति बच्चे के रूप में, पुत्र के रूप में आके। तो इसीलिए ज्ञान ये है कि आत्महत्या से हमारे कष्ट दूर नहीं होते, उल्टा बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम आत्महत्या ना करें, बल्कि जो भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं अपने कर्मों का फल समझकर उसको स्वीकार करें और भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रार्थना करें, याचना करें कि हमें शक्ति दें इन कष्टों को सहन करने की। बस अगर इतना हम कर लेते हैं तो फिर ये कष्ट चले जाएंगे, आएंगे, ध्यान नहीं रहेगा हमारे ऊपर, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आचार्य आते हैं ये समझाने के लिए। साथ ही साथ आचार्य आते हैं एक पोस्टमैन की तरह कार्य करने के लिए। एक जो पोस्टमैन होता है आपके घर पर आता है, चिट्ठी देता है, वो कभी खोलता नहीं है चिट्ठी अनलेस उसको कहा जाए। गांवों में कभी कभी होता है ऐसा, वो गांवों में जाता है, वो पढ़ना नहीं आता, बोले तुम ही पढ़कर सुनाओ, तो वो पढ़कर सुना देता है। लेकिन वैसे जो डाकिया होता है वो आपकी चिट्ठी जैसे है वैसे लाकर दे देता है, कुछ उसमें खोलकर अपना कुछ नहीं लिखता। जैसे मान लीजिए चिट्ठी में लिखा है कि आपको एक चिट्ठी आई कि आपको 10,000 रुपये मिले हैं, अब वो चिट्ठी पकड़ खोलता है और उसमें लिखा आप यहाँ पर आकर ले लीजिए, बोलता बहुत अच्छा है, और आपके पत्र में बदल देता है आपको 10,000 रुपये का टैक्स भरना है, इसीलिए इस चिट्ठी को फाड़ कर फेंक दीजिए। ऐसा लिखता है कभी? नहीं, जैसा है वैसा। तो आचार्य वही है कि जो संदेश भगवान ने दिया उसको बिना खोले आपको लाकर दे देते हैं कि ये संदेश है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, मुझे समर्पण करो, यही भगवान कह रहे हैं, बस ये पालन कीजिए, ये आचार्य है। और साथ ही साथ अपने उदाहरण से वो सिखलाते हैं। जो आचार्य होते हैं अपने उदाहरण से सिखलाते हैं शास्त्रों की शिक्षाओं को, क्योंकि हम लोग सुन सकते हैं बड़ी बड़ी चीजें, भक्ति करनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए ये माधवेंद्रपुरी जैसे आचार्य अपने जीवन से हमें सिखलाते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की कथा कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी बहुत महान भक्त हैं। वैसे माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम के सागर हैं। ये जो हमारे संप्रदाय में, महाप्रभु के संप्रदाय में कृष्ण प्रेम की नदी बह रही है, इसका स्रोत है माधवेंद्रपुरी। ये माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुई। उनके पहले किसी ने ऐसे कृष्ण प्रेम का इस परंपरा में प्रदर्शन नहीं किया। माधवेंद्रपुरी ने दिखलाया कैसे गोपियों का प्रेम होता है श्री कृष्ण के प्रति। कभी कभी तो उनके शिष्यों ने उनकी निंदा भी की, क्योंकि उनके शिष्य होते थे जो सोचते थे ब्रह्म पर हमें भी ध्यान करना है, भगवान मतलब ब्रह्म। और जब मृत्यु के समय माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय माधवेंद्रपुरी गोपियों के भाव में कृष्ण को पुकार रहे थे, बहुत सुंदर श्लोक है, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कद अवलोक्य से, जिसमें वो कह रहे थे कि हे दीनों के नाथ, हे मथुरा के नाथ, हे श्री कृष्ण कब आपका दर्शन होगा, ये उनका भाव था। लेकिन उनके शिष्य ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, अभी तो मृत्यु आने वाली है, ब्रह्म का ध्यान करो। माधवेंद्रपुरी ने कहा इसको इतनी दूर ले जाओ कि मेरी आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए, हटा दो इसको यहां से। तो माधवेंद्रपुरी ने उस प्रेम को दर्शाया। वो अयाचक वृत्ति के थे। अयाचक मतलब जो कभी मांगता नहीं, याचक यानी मांगना, और अयाचक यानी जो कभी मांगता नहीं है, भगवान की इच्छा से आया तो ठीक है, नहीं तो। तो कई कई दिन वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। अगर कोई लाकर उन्हें खाने दे देता था तो खाते थे, नहीं तो ऐसे ही रहते थे। आप लोग प्रयास मत कीजिएगा, ये सब चीजें ये नकल करने के लिए नहीं है, लेकिन इनसे सीखने के लिए है। तो अयाचक वृत्ति यानी कभी मांगते ही नहीं थे। दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद कोई लाकर दे दे रहे, बाबा इसको खाओ, अच्छा ठीक खा लिया, नहीं तो ऐसे ही। क्यों? क्योंकि कृष्ण में इतना मन लगा था कि उन्हें चिंता नहीं रहती थी अपने खाने की, पीने की, सोने की। कभी सो लिए, कभी नहीं सोए, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण। कितना सुंदर, हमारे मन में क्या चिंताएं चलती हैं, आप सबके मन में क्या चिंतन चलता है बताइए, 24 घंटे किसका चिंतन चलता है? हाँ, किसी के मन में धन का चलता है, परिवार का चलता है, क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान खेल रही है, कौन जीतेगा, कौन बनेगा करोड़पति, और पता नहीं क्या क्या है ना, यही सब चिंतन जिससे कोई लाभ नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया जीते या पाकिस्तान, लोग आकर आपको पैसा नहीं देने वाले हैं जो भी खेल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं कौन खेलते, तो आके आपको नहीं देंगे कि हाँ तुमने मेरे लिए बहुत चिंता की कौन जीतेगा, ये लोग मुझे 50 लाख मिला, 25 लाख तुम्हारा, 25 मेरा, कुछ नहीं। नींद खराब होती है, पैसा खराब होता है, समय बर्बाद होता है, और वो लोग उधर अपना 11 लोग इधर 11 लोग इधर, वो अपना एक बैट बॉल लेकर खेलते, आनंद लेते, पैसा लेते चले जाते हैं, और हम लोग मूर्ख अपनी नींद खराब करते हैं, देखते रहते हैं, राइट। तो हमारा चिंतन यही सब है, लेकिन भक्तों का चिंतन, आप केवल एक 2 मिनट कल्पना कीजिए, आपके मन से सारा चिंतन चला जाए। आप लोग अभी देखिए, प्रयास कीजिए, आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, ये सोचिए कि कोई चिंता नहीं है इस जगत की, आप ये जगत को छोड़ चुके हैं और इस समय आप भगवान श्री कृष्ण के धाम में हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, उनकी गायों को चरा रहे हैं, भगवान लेके जा रहे हैं गायों को, एक गाय आगे आगे भाग गई है और भगवान ने आपसे कहा जाओ उसको पकड़ कर लाओ जल्दी से, तो आपकी चिंता बस यही है कि गाय को कैसे पकड़ कर लाना। भगवान का स्मरण कितना सुंदर, कितना शांति, कितना आनंद देने वाला वो चिंतन है। तो माधवेंद्रपुरी सदैव वो चिंतन में रहते थे, इसलिए उनको कोई खाने पीने की चिंता नहीं, वो सोचते नहीं थे कि 2:15 बज गया, प्रभु जी का लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी तक प्रसाद का टाइम हो गया, बिल्कुल नहीं कोई चिंता नहीं होती थी। एक बार है भगवान के स्मरण में, दरअसल ऐसे होना चाहिए, कथा शुरू हो तो पता नहीं रहना चाहिए किसी को क्या हुआ, कहां पहुंचे, प्रसाद की चिंता नहीं। इसीलिए कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि कथा करनी हो तो सामने से इस घड़ी को निकाल देना चाहिए या संडे को उसको टर्न कर देना चाहिए, तब पता नहीं रहेगा, कथा चलती रहेगी। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे रहते थे, अयाचक वृत्ति के थे, और एक समय वृंदावन में गोवर्धन के निकट गोविंद कुंड स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है गोविंद कुंड, इतना सुंदर है कि बस ऐसे गोवर्धन यहाँ है और वो यहाँ, गोविंद कुंड एकदम गोवर्धन पर ही है कहना चाहिए तो गोवर्धन पर ही थे। तो उस समय वो ऐसे ही घूमा करते थे, तो ऐसे ही थोड़ा सा लेट गए, थोड़ी आंख लग गई उनकी, और फिर उन्होंने अचानक देखा एक लड़का आया, और एक लड़का बहुत सुंदर बालक हाथ में दूध का मटका लेकर आया, पात्र लेकर, और लाकर दिया कि ये लो दूध पियो, तुमने बहुत दिनों से, 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसको ले लो। तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला मैंने नहीं खाया है? तो उन्होंने कहा यहाँ आसपास सब गांव वालों ने मुझे बताया। अच्छा तो तुम कहाँ से हो? मैं अभी पास के गांव से हूँ। क्या करते हो? गायें चराता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर थे, माधवेंद्रपुरी को लग रहा था इतने सुंदर है बालक, तो ठीक है काम करो रुको मैं थोड़ा दूध पी लेता हूँ, ये अपना पात्र लेके जाना। बोले नहीं 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 तुम रखो इसको, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। वो चले गए। माधवेंद्रपुरी ने जब दूध पिया तो अमृत, आश्चर्य हो गया, ऐसा दूध कभी नहीं पिया उन्होंने। तो माधवेंद्रपुरी हैरान हो गए, पीते ही आंखों से आंसू आ गए उनके, भाव विभोर हो गए, कृष्ण भक्ति बड़ी तीव्र हो गई, और तब उन्हें स्मरण हुआ, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि जो बालक उन्हें वो दे कर गया कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। और उस समय माधवेंद्रपुरी बहुत बहुत आंसू बहा रहे कि कृष्ण आए और मैं पहचान नहीं पाया। वैसे कभी कभी भक्त भगवान को पहचान नहीं पाते और कभी रोते हैं और कभी झगड़ा करते हैं भगवान से। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। दरअसल बिल्वा मंगल ठाकुर का जीवन भी ऐसा ही भक्तिमय जीवन है। पहले का जीवन बड़ा पापी जीवन रहा उनका। बिल्वा मंगल ठाकुर जो अपने घर में थे वो पत्नी थी, पिताजी थे, घर बार थे, लेकिन फिर भी एक वैश्या से आसक्त थे। इतने आसक्त थे, इतने आसक्त, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिताजी की मृत्यु हो गई और उनका श्राद्ध चल रहा है, अभी बॉडी जलाना बाकी है, और बिल्वा मंगल ठाकुर सोच रहे हैं कि पुजारी इतनी देर क्यों कर रहा है, जल्दी करे, मुझे जाना है वैश्या से मिलने। ये उनकी चेतना थी, आप सोचिए। तो ऐसे व्यक्ति पापों में पड़े हुए, लेकिन आगे चलकर भगवान के बहुत महान भक्त बने। एक दिन रात्रि के समय उसी वैश्या से मिलने गए, बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, नदी पार करनी थी, कोई नाव नहीं थी। उन्होंने देखा कि कुछ बह रहा है, उन्हें लगा नाव होगी, लकड़ी का टुकड़ा होगा, बस उसी को पकड़कर चल दिए और उसी पर बैठकर उन्होंने पार कर लिया, नदी पार कर गए। देखा भी नहीं क्या था, दरअसल वो एक लाश थी किसी की नदी में बह रही। और फिर आए घर पर, आए, बारिश हो रही थी, नीचे का दरवाजा बंद था, ऊपर घर था उस वेश्या का, जाना चाहते थे ऊपर, देखा कुछ नहीं है, एक पेड़ पर रस्सी टंगी थी, बस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़कर वहां पहुंचे तो देखा एक्चुअली वो रस्सी नहीं, सांप था। अर्थात इतना ज्यादा उनका मन लगा हुआ था, बस वो वेश्या को देखना है, उससे मिलना है, कि देख नहीं पा रहे थे क्या कर रहे हैं। और जब वेश्या ने दरवाजा खोला, इतनी भयंकर रात में, इतना तूफान, आप आए कैसे? तो जब उसने बताया तो वेश्या हैरान हो गई कि आप मुझसे मिलने के लिए आप इतनी तीव्रता आपको। और उस समय वेश्या उनकी गुरु बनी। वेश्या ने कहा, अगर यही तीव्रता आपकी भगवान को पाने के लिए हो जाए तो निश्चित भगवान मिलेंगे आपको। और उस समय, उस दिन, उस क्षण बिल्वा मंगल ठाकुर ने सब कुछ त्याग दिया। इसीलिए अपने बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने ग्रंथ लिखा है कृष्ण कर्णामृत, और उसके प्रथम पेज पर वो अपनी गुरु मानते हैं चिंतामणि। चिंतामणि वो वेश्या का नाम था, उसको अपना गुरु माना क्योंकि उसने मार्ग दिखलाया। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी तीव्रता मुझे पाने के लिए है, मैं क्या हूं, यही तीव्रता भगवान को पाने के लिए लाओ। बहुत सुंदर उपदेश है, एक वेश्या का उपदेश हमारे लिए आदर्श है। क्यों? क्योंकि वो समझा रही है कि भौतिक चीजें, भौतिक आनंद कुछ नहीं, समाप्त होगा, यही तीव्रता भगवान को पाने के लिए लाओ। और बिल्वा मंगल ठाकुर चले गए। आगे जाकर ऐसा हुआ कि और एक स्त्री को देखकर वो आसक्त हो गए, तो वो स्त्री के पास गए और उन्होंने कहा कि कृपया आपके जो बालों में लगी हुई वो पिन है उसको दीजिए। तो स्त्री घबरा गई। अब सोचिए, कोई स्त्री बाजार से जा रही है और एक व्यक्ति आकर उसको बोलता है तुम्हारे बाल की पिन निकाल कर दो, वो तो घबरा जाएगी, अगर बाल भी निकाल के दे सके तो दे देगी, बाल की पिन क्या। तो उन्होंने कहा बाल की पिन निकाल कर दो। क्यों? वो बहुत आसक्त तो हो गए थे उसको देखकर, फिर से उनके मन में कोई गलत भाव आ रहा था। तो उन्होंने उस पिन को लिया और उसी के सामने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली उस पिन से। उन्होंने कहा कि ये आंखें ही हैं जो मुझे कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं, इसलिए मैं आसक्त तो हो रहा हूं। और ऐसे फिर उन्होंने भगवान को ढूंढना। तो ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक भजन लिखा कि एक बार जब वो जा रहे थे, वो तो अंधे थे, देख नहीं पा रहे थे, तो एक बालक आकर उनका हाथ पकड़ कर ले गया कि यहां चलो, यहां चलो, मैं ले जाता हूं ठीक से वृंदावन। और जैसे बालक ने हाथ पकड़ा, बिल्वा मंगल ठाकुर समझ गए ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है। और जैसे ही हुआ, वो पकड़ना चाहते थे, कृष्ण भाग गए, हाथ छुड़ाकर भाग गए कृष्ण। और उस समय बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा कि हे कृष्ण, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हो, अरे मेरा हाथ छुड़ाकर भागे हो ना, अगर शक्ति है तो मेरे हृदय से भाग कर दिखाओ। ये बिल्वा मंगल ठाकुर का भाव था कि ठीक है, हाथ छुड़ाकर भाग सकते हो, हृदय से नहीं भाग सकते। तो माधवेंद्रपुरी भी इसी तरह जब वो चले गए तो बड़ा दुख हुआ, सोचने लगे शायद फिर कभी मिलूंगा। और फिर से वो बालक उनके स्वप्न में आया, वही बालक, और उसने कहा कि मैं बहुत समय से यहां इस स्थान पर नीचे मिट्टी में दबा हुआ हूं, मुझे निकालो। और उस समय माधवेंद्रपुरी उठे और उन्होंने फिर सारे गांव वालों को थोड़ा बुलाया उस स्थान पर गए, उसको साफ किया, मिट्टी थी, घास फूस उग गई थी, सबको साफ किया और उसको खोदना शुरू किया। और धीरे 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 फिर वहां से बहुत सुंदर गोपाल जी की मूर्ति निकली, आज जो श्रीनाथ जी कहलाते हैं, नाथ द्वारा में है। तो वो गोपाल जी की मूर्ति वहां उनको प्राप्त हुई, बहुत प्रसन्न हो गए देखकर वो भगवान को। और फिर उन्होंने उत्सव किया माधवेंद्रपुरी में, बहुत सुंदर उत्सव, अन्नकूट या गोवर्धन अन्नकूट उत्सव। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से नीचे हैं, भूखे होंगे भगवान। तो गांव के गांव जब पता चलने लगा आसपास के गांव में कि कृष्ण प्रकट हुए हैं, गोपाल जी प्रकट हुए हैं, और उन्होंने क्या बनाया उनके लिए, एक पत्थर का आसन बना दिया। कुछ था नहीं, गोवर्धन की शिलाओं से एक पत्थर का आसन बना दिया और उस पर विराजमान किया। लेकिन जब गांव वालों को पता चला, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, जिनको भी पता चला गोपाल जी प्रकट हो गए हैं, वो सब बहुत कुछ बनाकर लाने लगे। कई दिनों तक अन्नकूट चला, हर रोज एक एक गांव बनाकर लाता था भगवान को अर्पण करने के लिए। इतना इतना राइस, दाल, सब्जी, स्वीट्स, पकौड़े, सब भगवान के लिए। ये ब्रजवासियों का भाव है, हम लोगों को भी मंदिर में ऐसे करना चाहिए। हर एक भक्त को एक सेवा कि कोई भगवान के लिए फूल ला रहा है, कोई भगवान के लिए घी ला रहा है, कोई भगवान के लिए दूध ला रहा है, कोई भगवान के लिए चावल ला रहा है, कोई भगवान के लिए अन्य चीजें ला रहा है। तो अन्नकूट चलता रहा कई दिनों तक, क्योंकि हर एक जो ब्रजवासी था, हर एक गांव वाला सोच रहा था, अरे गोपाल जी प्रकट हुए हैं, मेरा कर्तव्य है, मेरी भी सेवा होनी चाहिए। तो ऐसे प्रेम में वो उसको लेकर आते थे। तो कई दिनों तक अन्नकूट चलता रहा। और उसके बाद एक दिन, और भगवान स्वीकार करते रहे। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो असीमित भगवान वो कैसे एक मूर्ति में आ सकते हैं। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत है, वो अनंत कैसे एक छोटे से रूप में आ सकते हैं? आप लोग क्यों ऐसे मूर्ति की पूजा करते हैं? और हमारा प्रश्न है कि प्रेम के वश क्यों नहीं भगवान, वो भगवान जो स्वतंत्र हैं, वो प्रेम के वश अधीन हो जाते हैं, वो जो सर्वशक्तिमान हैं, वो शक्तिहीन हो जाते हैं, प्रेम के वश अपने भक्त के ऊपर आश्रित हैं कि जब भक्त लाकर भोग लगाएगा तब खाऊंगा, नहीं तो ऐसे भूखा बैठा रहूंगा। ये प्रेम है भगवान का। तो वो जो स्वतंत्र हैं वो अधीन हो जाते हैं, जो शक्तिशाली हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं, जो अनंत हैं वो सीमित हो जाते हैं प्रेम के द्वारा। और यही उन्होंने माधवेंद्रपुरी को दिखलाया। माधवेंद्रपुरी की सेवा के लिए, उनके प्रेम के लिए वो अनंत, वो असीम भगवान सीमित हो गए। वो एक बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुए। और फिर एक समय जब ये उत्सव हो चुका, माधवेंद्रपुरी ने सब सेवा वगैरह शुरू करवा दी भगवान की। देखिए, आचार्यों ने कई स्थानों पर भगवान की सेवा को ठीक किया है, ऐसे 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 सेवा होनी चाहिए। हम कई जगह देखते हैं कई आचार्यों ने भगवान के विग्रह की सेवा के लिए बहुत महत्व दिया है कि ये ऐसे होनी चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी ने कई ब्राह्मण रखे कि ऐसे ही भगवान की सेवा होनी चाहिए, रोज उनको ऐसे भोग लगना चाहिए, ऐसे आरती होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर हम विग्रह की सेवा ठीक से नहीं करेंगे तो हमारे भक्ति के जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम विग्रह को अपने जीवन का केंद्र मानेंगे कि यही हमारे जीवन के केंद्र हैं और इनके लिए हम अपना जीवन समर्पित करेंगे और इनकी सेवा उसको प्रमुख मानेंगे, बाकी सारी चीजों को रोक देंगे अगर इनकी सेवा के लिए रोकना पड़े, तब हमारे भक्ति का जीवन आगे बढ़ेगा। और माधवेंद्रपुरी ने ऐसी सेवाओं को स्थापित किया। तो विग्रह की सेवा ये कोई दिखावा नहीं है, विग्रह की सेवा ये प्रेम का आदान प्रदान है, अन्यथा कौन करेगा सेवा? प्रेम नहीं है तो कितने दिन सेवा करेंगे आप? कोई पुजारी को पैसा नहीं मिलता, हार बनाने वालों को पैसा नहीं मिलता, भोग बनाने वालों को पैसा नहीं मिलता, उल्टा अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, और उस प्रेम को हम सेवा के द्वारा अर्पित करते, नहीं तो भगवान को कैसे प्रेम कर सकते हैं। अब जगन्नाथ जी को गले तो नहीं लगा सकते, हाँ पुरी में जाएंगे तो वहां लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी लगाने देते हैं, अब तो वो भी सरकार ने हमने सुना बंद कर दिया है ना। उड़ीसा के कोई लोग हैं यहाँ, बंद हो गया ना। पहले ऐसा नियम, अभी हमें पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा नियम था, इस बार भी हम लोग को चढ़ने नहीं दिया था, हम लोग गए थे जब। पहले ऐसा होता था कि जब रथ यात्रा हो जाती थी तो रथ पहुंचता था गुंडीचा मंदिर और भगवान वहीं रहते थे, रात को अंदर नहीं जाते थे, अगले दिन जाते थे। तो उस दिन शाम को सबको अनुमति थी, कोई भी रथ के ऊपर चढ़कर भगवान को आलिंगन कर सकते थे। तो हम भी एक बार गए थे, हमें ध्यान है शायद 2000 में, 2000 में या उससे पहले कभी, तो एक बार गए थे। तो हमने जब सुना कि अरे भगवान को आलिंगन कर सकते हैं, तो हमारा तो बड़ा उत्साह कि हमें तो जाना ही है। तो वहाँ ऐसा नियम था तब उस समय कि जहाँ भी पहले कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं लगती थी, सीढ़ी होती थी आगे, उधर सब खड़े रहते थे पंडे, पैसा निकालो नहीं तो जाने का नहीं मिलेगा। और हम लोग तो फटे हाल, कोई जेब ही थी खाली, बस जेब में कुछ था नहीं, तो हम लोग सोच रहे कहाँ से जाएं। तो हम लोग किसी ने कहा चलो पीछे से जाते, पीछे से वो चढ़बड़ के ऐसे पहुंच जाएंगे। तो पीछे गए, थोड़ा ही चढ़ने लगे, उधर भी पंडा खड़ा था, पैसे निकालो नहीं तो नीचे जाओ। करे यहाँ भी, बोले नहीं होगा ही नहीं। तो खैर बड़े दुखी होके हम लोग खड़े थे, तो किसी एक ने बुलाया प्रभु जी आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो हमने को प्रभु जी बोल रहा है कौन है भाई, ये तो जान पहचान का होगा। तो एक पंडा था, दरअसल वो इस्कॉन का भक्त था शायद, पंडे वंडा पहन होगा वहां का, तो वो खड़ा हुआ था अरे आ जाओ कोई बात नहीं। तो चलो पीछे से किसी तरह कहीं से अंदर अंदर से घुस के ऊपर पहुंच गए, और अभी हम भगवान के सामने खड़े थे। आप सोचिए पहली बार जीवन में भगवान को आलिंगन करने का अवसर मिल रहा था, पहले हमने रथ यात्रा वगैरह दी ठीक है, पहली बार तो हमें तो थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मंदिरों में नियम था जब तक यू नो क्वालिफिकेशन ना हो, योग्यता ना हो, भगवान को कैसे हाथ लगाएं। तो हमें डर लग रहा था कि जाएं या ना जाएं। तो फिर हमने देखा कोई जीन्स पहने हुए आ रहा है, भगवान को आलिंगन कर रहा है, कोई दूसरा आ रहा है। हमने कहा भाई ठीक है, जब ये लोग भी कर रहे हैं तो हमें लगा हम तो इतने बुरे तो नहीं हैं, पान वान खा कर आ तो नहीं रहे हैं। तो हमने कहा चलो हम भी आलिंगन कर लेते, पता नहीं कब अवसर मिले, अच्छा हुआ कर लिया, उसके बाद कभी अवसर ही नहीं मिला आज तक। तो हमने कहा चलो, तो हमने भगवान को ऐसे आलिंगन किया, बड़ा आनंद आ रहा था भगवान को पकड़े, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते क्या अनुभव हो रहा था। और उसके बाद क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो हम उठने लगे तो हमारा हाथ पकड़ लिया, मतलब हाथ ही नहीं आ रहा बाहर। हमने कहा ये क्या हो गया। हमने कहा ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं था कि शायद भगवान को पकड़ के वापस नहीं आ सकते, क्या हो गया शायद राम नाम सत्य इधर ही हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं आ रहे। क्या हुआ देखा तो भगवान के पीछे दो पंडे बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले पैसे निकालो। हमने कहा अरे तो वो बड़े आश्चर्य की बात थी, हमें एक तो हाथ नहीं आ रहा, हमने सोचा क्या हो गया, लेकिन वहां पे हमने कहा रहे भैया नहीं है कुछ भी हमारे पास। तो ऐसे भगवान को आलिंगन करा जा सकता है, तो वो कभी कभी ठीक है, लेकिन वैसे रोज तो हम आलिंगन नहीं कर सकते। प्रेम कैसे दर्शाएंगे भगवान को, सेवा के द्वारा। तो जब हम भगवान के लिए बड़े प्रेम से भोग बनाते हैं, ये सोच के कि ये भगवान के लिए है, भगवान खाने वाले हैं, या भगवान के लिए हार बनते हैं जो भगवान को चढ़ते हैं, उसके बाद भक्त पहनते हैं महाप्रसाद के रूप में, लेकिन पहले भगवान को चढ़ते हैं। तो कोई अगर हार बनाते हैं बड़े प्रेम से, भगवान भगवान पहनने वाले हैं, या फिर कोई मंदिर साफ करते हैं कि अभी दर्शन होगा भगवान देखेंगे, अगर मंदिर गंदा है तो जल्दी जल्दी साफ कर दें, ऐसे भाव में भगवान की सेवा होनी चाहिए। कि जहाँ हम सोचे कि हम सब भगवान के लिए करें, भोग भगवान के लिए, हार भगवान के लिए, मंदिर साफ करना भगवान के लिए, प्रचार करना भगवान के लिए, तो ऐसे जो और भी अन्य सेवाएं, बहुत सी सेवाएं होती हैं, अभी तो हमने बहुत कम सेवाओं का वर्णन किया है, तो ये भक्त का भाव होता है। तो माधवेंद्रपुरी ने पूरी सेवा विग्रह की स्थापित कर दी, और फिर समय ज्यादा हो गया है ना। और फिर जब माधवेंद्रपुरी ने ये सेवा स्थापित कर दी तब उनको एक समय स्वप्न आया, भगवान सपने में आए और भगवान ने कहा गर्मी बहुत लग रही है, जैसे कारवार में भी गर्मी बहुत है, अभी जल्दी चंदन यात्रा प्रारंभ होगी तो गर्मी बहुत लग रही है, मुझे चंदन चाहिए, चंदन लगाओ मेरे शरीर पे, जल रहा है मेरा शरीर ये गर्मी से, कहां खड़ा कर दिया तुमने गोवर्धन पर मुझे। तो माधवेंद्रपुर में चंदन कहां से लेकर आऊं, क्योंकि वह ऐसा नहीं था उस समय कि गए और मार्केट से खरीद लाए, आज भी मुश्किल होता है चंदन असली मिलना। तो उन्होंने सोचा कहां से लाऊं, तो भगवान ने स्वयं कहा चिंता मत करो, जाओ मलय पर्वत पर, मलय चंदन, मलय पर्वत का चंदन तुम्हें उड़ीसा में मिलेगा। ये माधवेंद्रपुरी कहां थे, वृंदावन में, तो बोले जाओ उड़ीसा जाओ वहां से लेकर आओ। अब माधवेंद्रपुरी ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे ठीक है भगवान सेवा करना है लेकिन कुछ मेरी उम्र देखो, वृद्ध थे उस समय, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान को मेरी उम्र देखो, मेरे स्थान देखो, क्या सेवा दे रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगा। ये थोड़ा दरवाजा खोल देना, अंधेरा हो जाता। तो कोई कुछ तो मेरी सेवा देखिए क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, तुरंत अगले दिन खुद तैयार हो गए, जबकि इतने सारे लोग थे लेकिन आदेश उन्हें मिला है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है चंदन चाहिए ना, कुछ दो चार लोगों को भेजता हूं ब्राह्मणों को, जाओ चंदन लेकर आओ भगवान के लिए, नहीं, खुद तैयार हुए जाने के लिए। और उस समय क्या था, ऐसा नहीं था कि प्लेन से जाना था, ट्रेन से जाना था, बस से जाना था, कुछ नहीं था, पैदल चल के जाना था। उम्र हो चुकी थी, गर्मी का तीव्र समय, और पैदल चल के जाना, और कहां से, वृंदावन से उड़ीसा। कोई ऐसे ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है हब्बूवाड़ा से नंदनगढ़ तक जाना है तो कोई बात नहीं चले जाएंगे, हाँ ऐसा नहीं था। लेकिन माधवेंद्रपुरी दिखला रहे थे कि अपनी सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए, ये सेवा एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मान सम्मान है, एक अवसर है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का, एक अवसर है अपने हृदय को शुद्ध करने का। इसलिए माधवेंद्रपुरी उससे समझा रहे थे कि हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें सेवा मिली है, किसी को दे नहीं देना चाहिए, ठीक है सेवा होनी है ना, चंदन आना है ना, कोई ले आएगा, नहीं वो खुद गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया और उन्होंने सोचा मेरी सेवा है, मैं क्यों किसी को दूं, मैं क्यों नहीं करूं। तो ऐसे वो चंदन लेने के लिए आने लगे, तो चलते 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 वो बहुत समय बाद रेमुना में आए जो उड़ीसा में है, और फिर वहां से उन्हें आगे जाना था चंदन लेने। लेकिन रेमुना में एक बहुत सुंदर घटना हुई माधवेंद्रपुरी के साथ, और उसमें भी बड़े अच्छे सिद्धांत भक्ति के हमें प्राप्त होते हैं कि क्या घटना हुई। तो इस घटना को अगले रविवार को आप सबको सुनाएंगे और आगे माधवेंद्रपुरी की कथा कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब पे ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहते, भक्तों ने पहले ही घड़ी को देखना प्रारंभ कर दिया था, 5 मिनट पहले ही हमने पहले ही कहा था कथा शुरू होती है और यही हो जाता है, बस प्रभु जी हो गया, अब रुकिए, हम ना तो माधवेंद्रपुरी हैं ना कुछ हैं, आप किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न किसी का हो। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो कुछ सूचनाएं हैं, तो हमारा प्रश्न है कि सूचना देने वाला कहाँ है। ठीक है, तो अभी 23 तारीख को, आज 20 तारीख है, 21, 22 और 23 अर्थात बुधवार को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, अर्थात चैतन्य महाप्रभु जिस दिन प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर उसे गौर पूर्णिमा कहते हैं। हाँ, तो इस उत्सव को हम लोग मना रहे हैं। आपने देखा होगा शहर में भी थोड़े बहुत पोस्टर्स, उसके थोड़े पब्लिसिटी हुई है। तो हम लोग आप सब से विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लेके, क्योंकि इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जो साल भर कभी नहीं होती है, और वो ये है कि इस दिन चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हर व्यक्ति कर सकेगा, हर एक के लिए सुविधा है। वैसे जब हम लोग मंदिर में अभिषेक करते हैं तो प्रायः केवल कुछ वरिष्ठ भक्तों को ही अनुमति दी जाती है, वही लोग करते हैं। आप लोग बाहर बैठकर बस देखते रहते हैं, है ना, थोड़ा कीर्तन करते हैं, यहाँ चलता रहता है। लेकिन इस बार क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा गया है, सॉरी आपका काम मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट है। वो भी सोच रहे होंगे कि बस अभी तो मेरी सारी सूचनाएं आप दे दोगे तो मैं क्या बोलूँगा। बहुत है, चिंता मत करो। तो हर वर्ष नहीं, क्योंकि महाप्रभु महावदन्याय है, तो इसलिए हर वर्ष केवल चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव पर, अर्थात केवल गौर पूर्णिमा जो इस बार 23 तारीख को है, हम लोग ये अवसर करेंगे। तो यहाँ पर इस मंदिर में, मंदिर के हॉल में जितने भी पुरुष हैं प्रभु जी, उनके लिए भगवान को अभिषेक करने का अवसर होगा, और बाहर गार्डन में माता जियों के लिए, अर्थात सब कर सकेंगे, किसी को भी कोई बंधन नहीं। आप सब आए और भगवान को अभिषेक करें, आपके परिवार वालों को लाएं, बच्चों को लाएं, ताकि वो भी सब अभिषेक कर सके भगवान का, तो सबको ये अवसर मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, शाम को 6 बजे से ठीक शुरू हो जाएगा कीर्तन भजन, 6:30 बजे हम लोग अभिषेक शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं अभिषेक में भाग लेना तो 6:30 के पहले आप सब आइए, और जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको भी बताइए, उनको भी लेकर आइए, ताकि सबको अभिषेक करने का लाभ मिल सके। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के विषय में थोड़ी सी कथा होगी, और उसके बाद प्रसाद सबके लिए होगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस उत्सव को मनाने के लिए आइए। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में करवा केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आज का जो इंस्पॉन्सर है श्री गंगाधर प्रभु और प्रथा तेंदुलकर, तो उनका हम हार्दिक सम्मान करेंगे, यहाँ कुछ उपहार देंगे। तो गंगाधर प्रभु प्लीज आइए, आप प्रभु जी से उपहार स्वीकार कीजिए।
प्रथा, प्रथा कहाँ है? इसको एक बहुत अच्छी आदत है, ये दंडवत करती रहती है हमें। अरे वो खड़ी थी कि कोई फोटो खींचेगा, लेकिन किसी ने फोटो खींची नहीं, पता ऐसे एकदम खड़ी थी लेके।
जो भी परिवार है इनके, वो सभी मंदिर में आए, हमेशा कुछ सेवा करें, ऐसे ही भगवान के सेवा में।
प्रभु जी जब अनाउंसमेंट करते हैं तो हमें रेलवे प्लेटफॉर्म की याद आती है। जैसे ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है, 4:10 पे ट्रेन आने वाली है, धीरे इतनी देर है, टक 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 टक। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से प्रार्थना करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी शक्ति दे, ताकि ये अच्छा अनाउंसमेंट कर सके।
सौभाग्य है, कृपया करके उस दिन सभी बड़ी मात्रा में आए और भाग लीजिए। और इसमें कुछ और भी आप लोग सहायक सहायता कर सकते हैं, जैसे प्रसादों में या ऑफिस आइटम में या फ्लावर के डेकोरेशन में। कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता होगी जिसके लिए नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है, आप लोग धन दान कर सकते हैं। कुछ माता जी लोगों का नाम है जो फूल सेवा के लिए, मैं नाम बोल रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए।
और उसके बाद
भगवान के हाथ बनाने के लिए कुछ माता जी का नाम है, कृपया ध्यान से सुनिए। श्रीमती कनक मंदिरी माता जी, श्रीमती सीताली, श्रीमती पद्मा जी माता जी, श्रीमती प्रीति भूई माता जी, श्रीमती पुष्पा माता जी, मिस नीता माता जी, श्रीमती शालिनी माता जी, मिस आशा गुंडीन माता जी, श्रीमती सुमन माता जी, श्रीमती गीता माता जी, श्रीमती भोसी माता जी, मिस नेत्रा सिर्फ संडे के लिए, श्रीमती राधा माता जी, मिस रेवंकर माता जी, श्रीमती मंगला माता जी। ये सभी माता जियों से अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया अपना सेवा भगवान का आशीर्वाद समझ के कृपा समझिए।
इस माता जियों को क्लास के बाद यहाँ पर 5 मिनट रुकना है कीर्तन के बाद, और उनकी सेवा की चर्चा की जाएगी। ये पूरी सूचना थी। प्रभु जी थोड़ा आधा बोल गए, आधी हम बता रहे हैं सूचना, ठीक है। प्रभु जी आदेश देते हैं, ठीक है, टक 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 टक, ये नाम है, आपको अपनी सेवा करनी है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हम प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से। हाँ जी, फोटो नहीं खींची, कैमरा है किसी के पास? हाँ, कोई मोबाइल वोबाइल से कोई तो खींचो, बेचारे वो जाएगी नहीं, चलेगी ठीक। यस, आगे कोई
होगा,
थैंक यू, धन्यवाद। जो भी पहन कर आए, लेकिन कुछ ना कुछ पहन कर आए तो फिर उसको सबके लिए अनुमति है, ठीक है। हरे कृष्ण।